पीछे से जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी की बुनियादी तौर पे कंटिन्यूएशन है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी जो अभी तक हज नहीं कर चुके या हज जिनके पास हज करने का भी मौका नहीं आया उनको भी हज का शौक दिलाया है और हज की असल रूह बताई है। तो आइए ज़रा आयत का तर्जुमा साथ लेके चलते हैं। الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، کون سے ہیں اب اس کو دیکھیں گے، ہاں لیکن فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق، بس جو کوئی حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل نہ ہو اور نہ کوئی نافرمانی کا کام ہو، ولا جدال فی الحج اور نہ حج کے دوران کوئی بھی جھگڑا ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی نیکی تم کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہٰذا خوب اچھی نیکیاں کیا کرو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو سفر حج کے لیے، جبکہ بہترین زاد راہ تو تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ہی ڈرا کرو اے عقل والو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ دیکھ چکے کہ حج کا موضوع شروع ہو چکا تھا اور کس طریقے سے لوگ حج کو ایک رسم بنا چکے تھے۔ یہاں کچھ اسی کی باتیں انشاءاللہ تعالی ہمارے سبق میں آئیں گی، اور اس سبق کے بعد کم از کم آپ کے ذہن میں حج کی حکمت اور حج کا اصل جو مقصد ہے وہ پتہ۔ کون سے ہیں حج کے مہینے ہم پچھلی آیات میں دیکھ چکے۔ صحیح احادیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر و معلومات کی تفسیر کی، لکھ لیجئے آپ، یکم شوال سے ذیقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن، اور جو لوگ عمرہ کرنے کے شائقین ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں عمرہ کا ویزا نہیں ملتا کیونکہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پہلے سے رش بہت سارا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جہاں سے ہمیں حدیث کی اہمیت پتہ چلی کہ اگر ہم حدیث کو نہ کھولیں تو پھر یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ حج کب کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ اور معلومات کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جانے پہچانے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں، پہلے سے ہی یہ چیزیں جو تھی آ رہی ہیں۔ حج کا سلسلہ پیچھے سے چلتا آ رہا تھا۔ مکہ والے ایک قسم کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اس قسم کی چینجز کر کر کے حج کو بالکل ایک میلہ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے نیکی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا کہ نیکی کب کرنی ہے یہ بھی اللہ ہی بتاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں حج کراتے اور ذیقعد میں ہم روزے رکھ لیں گے، تو وہ نیکی نہیں ہوگی۔ دین کا مزاج سمجھ لیجئے کہ نیکی اصل میں اطاعت کا نام ہے، آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جو بندہ اللہ کی بات نہیں مان سکتا نا وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ آپ ان سارے سبقوں کو پڑھتے ہوئے ضرور یہ فیلنگ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کہ ہمارے ہاں آج جو مزاج ہے وہ کیا ہے کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے بس وہ کر لو، جو ٹھیک ہے بس میں وہی کروں گا اور مجھے کسی دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ تبھی ہوگی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی۔ اب کرنا کیا ہے ان مہینوں میں، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں، فمن فرد فیہن، اور جو مقرر کر لے ان میں۔ ہننا سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع ہے نا، پیچھے اشخور کا لفظ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ہے، مراد یہ ہے کہ جو حج کی نیت کر لے اور وہاں پہنچ جائے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ آیت ایسے لگتی ہے کہ بس گھر میں بیٹھے تھے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد یہ سارے کام نہیں کر سکتے، حالانکہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو حج کے لیے نکل پڑا، خاص طور پہ اب اس نے احرام باندھ لیا، حج کے دن شروع ہو گئے، تو اب کیا نہ کرے۔ کچھ پابندیاں ہیں یہاں حج کی۔ پہلی چیز ہے فلا رفسا، رفس نہ کریں۔ رفس کہتے ہیں عربی زبان میں ہر وہ حرکت جو شہوت پر ابھارے، یعنی لسٹ، ایموشنل ہونا، سینٹیمنٹس کو پروک کرنا، ایسی ہر حرکت کو رفس کہتے ہیں۔ یہاں کنایا ہے، یہ کنایا کہتے ہیں اشارہ یا منی ڈھکی چھپی بات کرنا شوہر اور بیوی کے خاص تعلق کی طرف۔ تو اس کے اندر خاص تعلق اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی ساری ہی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ میسج دیتے ہیں کہ شہوت کے لیے نہیں، مقصد کے لیے جیو۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایک سلوگن دیا جاتا ہے، ایٹ ڈرنک एंड बी मैरी, खाओ पियो शादी करो मौज मस्ती। और ऐसा एक तसव्वुर दिया जा रहा है दुनिया में हर आने वाले दिन में कि हम इस दुनिया में फ़न के लिए आए। छोटे छोटे बच्चे की ज़ुबान पे बोर 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 की बात आती है, आई एम बोर। छुट्टियां आती हैं तो माएँ खुद ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं कि हाय ये बच्चे तो बड़े बोर हो रहे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, किसी तरह से कुछ मामला ऐसा हो जाए जो इनके साथ किया जाए। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया में इंसान को कोई फ़न के लिए नहीं भेजा गया। अल्लाह ताला ने हम सबको एक बहुत बड़ा मकसद देकर भेजा है। पिछली आयात में हमने क़िताल के मौजू में ये बात देखी थी कि हर मुसलमान असल में अल्लाह की फ़ौज का सिपाही है, जो पहले ख़ुद ट्रेनिंग हासिल करता है कुरान और सुन्नत को समझने के बाद, फिर अपने अखलाक और अपने मामलात से दूसरों का दिल मोह लेता है, और उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को फैलाता है। यकूनुद्दीनु लिल्लाह, वो ख़ुद भी अल्लाह वाला होता है और दुनिया में अल्लाह के नाम का झंडा भी लगाता है। अब किसी भी जगह आप देखें कि आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी सख्त होती है। पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में जाके देख लीजिए, बाज़ दफ़ा सुबह फजर के बाद उठा के सर्दियों में वो कहते हैं कि बाहर जाके आप एक्सरसाइज करें, कभी गर्मियों में मोटे कपड़े पहना के वो कहते हैं कि धूप में फिरें। क्यों? ताकि वो सख्त मिजाज हो जाएं, हार्ड वर्कर हो जाएं, जब दुश्मन आए तो उस वक्त ये बात ना हो उनके जहनों में कि हमें तो पता ही नहीं था करना क्या, हम तो इतनी गर्मी में जाते हैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होता है ये वो। बिल्कुल यही सोच यहाँ ले आई है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ख़ास मकसद के लिए भेजा। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़िंदगी में एक बार जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो हज का है। ये जो 5 रिचुअल्स हैं ना इस्लाम के, वो असल में ट्रेनिंग्स हैं हमारी। हदीस में आता है कि ज़िंदगी में एक बार हज तो लाजिम है ना। जो शख्स ख़ुद को मुसलमान कहलाए फिर भी हज ना करे, ना उसका इरादा उसके दिल में आए, तो वो समझ ले कि उस वो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को कहीं भी अपने आप को फिट कर ले। इसी तरह रोज़ा जो है ये साल के बाद एक शॉर्ट कोर्स होता है। हज ज़िंदगी में एक बार कर लो, अगर शऊर के साथ करोगे इंशाल्लाह तुम एक अच्छे सिपाही बन के वहाँ से निकलोगे, तुम एक आलमगीर बिरादरी का हिस्सा बनोगे। हज का जो एक मेन थीम जिसको एक लफ्ज़ में हम रखेंगे ना, तो वो यूनिटी है। हर इस्लामी रिचुअल का एक लफ्ज़ है, मसलन जैसे नमाज जो है ये आजिज़ी सिखाती है, ज़कात शेयरिंग सिखाती है, और हज यूनिटी सिखाता है। किस तरह खिलाफ़ तबीयत माहौल में भी तुम खुश रहो। हज में सारी दुनिया के लोग आए होते हैं, गोरे काले मोटे पतले, अमीर गरीब, किसी के जिस्म से हो सकता है पसीने की स्मेल आ रही हो, पाँव पे पाँव आ सकता है। अब ऐसे वक्त में एक तो मुसलमानों को ये एहसास होता है कि वाकई दुनिया में इतने मुसलमान हैं, फिर दूसरी बात यह कि जहाँ इतने रंग रंग के लोग आते हैं वहाँ सब्र बहुत करना पड़ता है। तो 3 पाबंदियाँ यहाँ लगा दी कि रफ़स ना करो, यानी ज़िंदगी को सिर्फ लस्ट ना समझो। तुम सिर्फ इसी नफ्स के तकाजे पूरे करने के लिए दुनिया में नहीं आए कि हर वक्त तुम ये देखो कि मैं किससे मोहब्बत करूं और कौन मुझसे करता है। आज के दौर का जो बिल्कुल एक मारूफ स्लोगन है वो यही है कि 15-16 साल का होने पे अगर किसी लड़की को कोई बॉयफ्रेंड ना मिले तो वो घर वाले भी परेशान होने लगते हैं, और लड़के में देखें कि कोई दिलचस्पी नहीं लड़कियों में ले रहा तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये नॉर्मल ही ना हो। इस्लाम कहता नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे ज़रूर आने चाहिए कि हलाल चीज़ तुम्हारे पास है और तुम रुक जाओ। फिर हम देख चुके कि रमज़ान के दिनों में ये पाबंदी लगा दी गई, वहाँ रमज़ान की रातों में अलाउ कर दिया। इसी तरह हज का मकसद चूँकि ट्रेनिंग है तो कहा कि तवज्जो अल्लाह की तरफ रखो, क्योंकि इंसान के ऊपर असर होता है। आप देखें कि हम इंसान इतनी जल्दी मुतासर होते हैं, हम क्या पहनते हैं इससे हमारा मूड बदल जाता है, हम क्या खाते हैं हमारे एक्शंस पे इसका असर आता है। तो जब हर वक्त बंदा शहवत वाले लस्ट वाले और सेक्स वाले माहौल में रहता है ना, तो उसकी इफ़ेक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो कहा कि कुछ दिन ज़रा ये तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोर्स करो कि जिससे तुम्हारी तवज्जो पूरी की पूरी अल्लाह की तरफ हो, पूरे के पूरे अल्लाह के बन जाओ। हालांकि ये हलाल है, इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन एहराम की हालत में इसको मना किया गया। दूसरी चीज़ वला फसूक, फिसक का लफ्ज़ हद से पार होने को कहते हैं। पीछे भी हम पढ़ चुके फासिक की तारीफ़ में, कली का खेलना या चूहे का बिलों में से निकलकर शोर मचाना, कुछ इस किस्म की बातें करना। तो फिस्क में हर गुनाह आ जाता है, वैसे भी मना। देखिए रफ़स आम हालात में जायज़ था शोहर बीवी में, लेकिन यहाँ मना किया। लेकिन यहाँ आ गया फिस्क। फिस्क ना सिर्फ ये कि हज और उम्र के अहराम की हालत में मना है, बल्कि पूरी ज़िंदगी मना है। यहाँ इसको मना करके बता दिया कि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत पैदा होगी, जब तुम एक ख़ास अरसा अहराम की पाबंदियों में रहोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह बात में भी इससे मना होने में आसानी होगी। गाली देने को हदीस में फिस्क कहा गया। इसी तरह हमारे आमाल के साथ साथ हमारे अफ़ाल में भी, अक़वाल में भी फिस्क होता है। बाज़ दफ़ा लोग ऐसी ही बेकार बातें बोलते रहते हैं, गालियाँ बकते रहते हैं, बाज़ ऐसी गुनगुनाते रहते हैं, बाज़ वैसे ही नज़रों ज़रा देखें उधर के, कहीं नज़रें चुरा के गलत चीज़ देख ली, कभी गलत चीज़ सुन ली। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मना है। ना सिर्फ हज में मना है बल्कि बाद में भी मना है। लिहाजा जहाँ अजर ज़्यादा होता है वहाँ पे फिर किसी काम के करने में गुना भी तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। हत्ता कि यहाँ तक आता है कि खादिम को डांटना तक भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा काम करेगा तो उसके हज पे फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ है वला जिदाल फिल हज। हज के दिनों में कोई झगड़ा ना करे। जिदाल का लफ्ज़ जदला से है, जीम दाल लाम इसका रूट होता है, जैसे हाथापाई करना कहते हैं ना, कि लड़ाई ना करो। और अल्लाह की हिकमत देखिए कि वहाँ हर एक से लड़ने को दिल जाता है। हज में वो लोग भी लड़ते देखे जो आगे पीछे कभी नहीं लड़े, और जो शोहर बीवी के वहाँ झगड़े होते हैं, संदूक रख के बैठे होते हैं लड़ने, वो चीज़ें खरीदी क्यों थी, ये निकाली क्यों है, अब भुगतो इसको। बीवी वो रियाल रियाल वाली दुकान पे खड़ी है, मैंने पोते के लिए लेना है, मैंने नवासी के लिए ये लेना है, और बुढ़े बाबा जी लड़ रहे होते हैं, तुम्हें उठाना पड़े तो मैं करूँ। और हकीकत है कि हज में इंसान का बहुत ही लड़ने को दिल करता है, लेकिन जो बंदा अपने नफ्स पे काबू पाएगा ना, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से अजर बहुत है। हत्ता कि वो खादिम को डांटना भी मना है। बच्चों के साथ बाज़ लोग जो हज करते हैं उनको तो आने के बाद यही अंदेशा लगा रहता है कि पता नहीं हमारा हज कबूल भी हुआ है कि नहीं, हमने तो बच्चों को इतना डांटा है। तो तरबियत के लिए करना कोई और बात होती है, लेकिन आम हालात में इस चीज़ को, इसे अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लगता है कि बंदे को बड़े ठंडे मिजाज का बनाना चाहते हैं। गर्मी लग रही है, लड़ने को दिल चाह रहा है, नहीं लड़ो। बहुत सर्दी लग रही है, लड़ने को दिल चाह रहा है, नहीं लड़ो। नींद आ रही है और कोई तुम्हें सोने नहीं दे रहा, ना लड़ो। यानी बंदा मोमिन दूसरों के साथ मिल के जीना सीख ले, ये है एक आलमगीर बिरादरी में रहने के तरीके, अदब, कि किस तरह से एक इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के लिए खालिस करता जाता है, कि उसको पता चल जाता है कि मेरा रब मुझे जो कुछ भी कहेगा मैं वो करता रहूँगा, मेरे अंदर तहम्मुल आएगा, तक्वा आएगा, मैं अपने आप को अच्छे तरीके से रखूँगा। सही बुखारी और मुस्लिम, जिसको ऐसी रिवायतों को मुत्तफिक अलैह हदीस कहते हैं, इसका एक खुलासा है। आपने फरमाया जिसने हज किया और शहवानी बातों से बचा और फिस्को फजूर से बचा, यानी ये जो बातें मना थी उससे रुका, तो गुनाहों से वो इस तरह पाक हो जाता है जैसे वो उस दिन पाक था जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। यानी जिस वक्त उसकी माँ ने उसको जन्म लिया था वो गुनाहों से पाक था, वैसे ही इंसान हज से पाक हो के आता है। ये गारंटी है इंसान के हज के कबूल होने की, कि जब वो वापस आए तो उसका दिल लड़ाई झगड़ों से पाक होते हुए नेकियों की तरफ आए। और फिर आगे रग़बत दिलाई कि ये तीन काम ना करो। करो क्या? वमा तफ़लू मिन खैरी यालमहुल्लाह, और जो भी नेकी तुम करोगे अल्लाह उसको खूब जानता है। अच्छे तरीके से जो नेकियां करोगे अल्लाह उसको जानता है। क्या पता चला कि रुकने के लिए सिर्फ तीन काम है और करने के काम बहुत सारे हैं। इससे पता चलता है कि इस्लाम नेकी का एक बहुत वसी पैगाम देता है। पीछे बिर में भी हम देख चुके थे मुख्तलिफ़ किस्म की नेकियां करो। आज के दौर में जब लोग हज पे जाते हैं ना, तो फिर कभी मशवरे के लिए आते हैं, हम वहाँ जाके क्या करें, तो मैं उनको हमेशा ऐसे ही मशवरे देती हूँ कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की नेकियों की नियत करें। मसलन अपने साथ अच्छी सी बुक्स लेके जाएं। एक तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ सीरत की बुक हमेशा, और रही को मख्तूम मुझे भी पसंद है, मैं वही अक्सर कहती हूँ। मैंने कहती है अच्छा आप अपने साथ सीरत नबी की ये बुक ले जाएं, मक्का में जब आप हों तो मक्की दौर पढ़ें, और जब आपको मदीना में जाने का और ज़ियारत का मौका मिले तो फिर आप मदनी दौर पढ़ें। और हकीकत में ये बात इतनी ज़्यादा कारामत साबित हुई कि लोग बाद में आके बताते हैं कि जो मज़ा हमें वहाँ बैठ के सीरत पढ़ने में आया है वो कभी आगे पीछे नहीं आता। حقیقت میں پھر ان گلیوں میں انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگتا ہے. اسی طرح ایک خاتون تھی تو وہ بچوں کو لے کے گئیں اپنے ساتھ حج پہ. تو عموماً آپ دیکھیے کہ بڑا ہی خطرہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, وہ تو ہر موڑ پہ رکے ہوئے ہوں گے, ہائے کیا یہ لے دے وہ دے دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو ساتھ لے جانے سے پہلے, عام جو تیاری کے دن تھے اس میں, اس انہوں نے اپنے لفظوں میں ہلکے پھلکے انداز میں سیرت کے واقعات سنانے شروع کر دیے, کچھ مکی دور کے کچھ مدنی دور کے, اور ساتھ ہی ہر بات میں یہ کہنے لگ گئیں کہ اچھا وہاں جاؤ گے نا پھر تم دیکھنا, وہاں جاؤ گے تو دیکھیں گے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس چیز سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہم جب گئے نا تو میں نے جو باتیں بچوں کو کہنی تھی وہ بچے مجھے سنانے لگتے تھے, ممی یہ وہ جگہ ہے یہاں پروفٹ کے ساتھ یہ ہوا تھا, ممی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. اور واقعی بچے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آئے. لہٰذا رسمی نیکیوں کی بجائے کوئی خاص سالڈ قسم کی نیکی آپ کر سکتے ہیں. پہلے دور میں لوگ کیا خیر کرتے تھے, کیا نیکی کا کام کرتے تھے, وہ نیکی جو اس وقت آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور وہ کیا تھا, علم حاصل کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ چاروں ائمہ کرام جن کو آج لوگ بہت عزت سے پکارتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمہ اللہ اور باقی دو امام بھی, یہ چاروں حرم کے اندر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے اور لوگ بڑے شوق سے ان سے علم سیکھنے جاتے تھے. آج کے دور کا یہ جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے نا, یہ نیچرل نہیں ہے کہ آپ کو صبح 6 بجے اٹھ کے اسکول بھیج دیتے ہیں اور 5 بجے آپ تھکے ہوئے آتے ہیں اور پھر اسائنمنٹس کرتے ہیں اور پورا سال پڑھتے ہیں پھر اگلے لیول پہ جاتے ہیں. یہ قطعاً صحت مندانہ نظام نہیں ہے, لیکن ہم سنتے سنتے اس کے عادی ہو گئے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ حج کے دنوں میں پوری دنیا سے مختلف عالم یا استاد حرم میں آ جایا کرتے تھے, پھر جو لوگ جاتے تھے نا حج کے ساتھ ساتھ وہاں پھر ان استادوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. مثلا کوئی حدیث کا استاد ہوتا, کوئی گرامر کا ہوتا, کوئی تجوید کا ہوتا, واللہ عالم کوئی دنیاوی تعلیمات کے بھی وہاں جاتے ہوں گے. پھر لوگ وہاں 2-2 3-3 دن کے فل ڈے کورسز کرتے تھے. جیسے ایک خاتون ہے کریمہ بنت المروزیہ, تو ان سے لوگ بخاری پڑھا کرتے تھے حج کے لیے جب آتے, تو یہ وہاں حدیث کا سبق دیتی. اور کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی جو خود اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم بنے, انہوں نے 3 دن میں صحیح بخاری ختم کر لی ان سے. اتنا شوق تھا کیونکہ کہ وما تفلو من خیری عالم اللہ, کتنی مہریں لگتی ہیں نا. دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں نا اس وقت, تو یہ جگہ آپ کے ٹریسز لے رہی ہیں. ہم جو کر رہے ہیں نا یہ جگہ ہمارے ٹریس لے رہی ہے. کل قیامت کے دن یہ جگہ بولے گی, یہ ڈیسک بولے گا, یہ ایک ایک کتاب بولے گی کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے, کیا سنتے تھے. ہمارا دل بھی یہاں تھا کہ نہیں, ہمارا دماغ بھی یہاں تھا کہ نہیں, ہم کیا کرتے تھے. اسی لیے یہ لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے یہ کام کرتے تھے تاکہ لوگ ہماری یہ جگہ ہماری گواہی دیں. کوئی کام کر سکتے ہیں آپ, آپ اپنا جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ان دنوں کی فائلس ساری ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے جائیں ساتھ ویب سائٹ سے, اور وہاں بیٹھ کے اپنا سبق یاد کریں, وہاں آپ ٹیسٹ بھی دیں, پھر آپ وہاں اپنے بیٹھ کے اسائنمنٹس کریں. میں نے دیکھا ہے حج میں بہت وقت ہوتا ہے اور پھر بالآخر ایک خاص حد تک طواف کر کر کے لوگ تھک چکے ہوتے ہیں. کتنا کو بھی آپ دیکھیں دعاؤں کی کتابوں سے آپ پڑھیں گے کیا کریں گے, پھر وہ بازاروں میں نکل جاتے ہیں, شاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں, بیٹھ کے خاندانی سیاست شروع ہو جاتی ہے, باتیں کر رہے ہیں فون پہ, لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی زیارتوں پہ نکل جاتا ہے. یہ نہ کریں, یہ وقت ضائع ہوگا. آپ دیکھیے کہ حج کے تھوڑے سے دن ہیں, اللہ کرے کہ آپ جب بھی جائیں اس ایک ایک دن ایک ایک منٹ کو آپ اس طرح استعمال کریں جیسے وہ آپ کے ڈالرز اور پاؤنڈز ہیں. بہت قیمتی دن ہوتے ہیں, ایک ایک نماز وہاں ایک ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوتی ہے. تو پہلے سے سوچیں, اخلاص کے ساتھ جو نیکی کریں گے اللہ کے لیے نہ کریں, لوگوں کے لیے نہ کریں, اللہ کے لیے کریں, کیونکہ یعلم اللہ. بعض لوگ پھر آ کے گنواتے ہیں, میں نے اتنے قرآن پڑھے, میں نے اتنے طواف کیے, میں نے اتنے بوسے لیے, اور جا کے مردوں میں لڑائیاں کر کر کے گھستی ہیں عورتیں, اور جا کے حجر اسود کا بوسہ لیتی ہیں اور آ کے پھر دوسروں کو سناتی ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی اب لوگوں کی کہانیاں سنا کریں جب حج سے آتے ہیں, لوگ بھی ان کے ارد گرد یوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ کہانیوں کی پٹاری کھل گئی, پھر میں حتیم میں گئی, پھر میں تو روز وہاں نماز پڑھتی, میں نے جا کے وہاں تسبیح نماز پڑھی. اللہ کے بندو, تسبیح نماز کیا پڑھنی ہے جو باقی کھڑے تھے؟ یعنی وہاں ایک حصہ ہے حتیم کا کہ جس کے اندر نفل پڑھنا ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ کے آپ اندر کھڑے ہیں نا. اب حکم کیا ہے کہ جائیں, آپ کو موقع ملا جلدی سے 2 رکعت پڑھیں تو نکل جائیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے. کچھ لوگ جا کے وہاں ڈیرہ ڈال دیتے ہیں, چھاتے ہی نماز شروع. میں نے خود دیکھا ہے لوگ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. इसी तरह जब मस्जिद नबी में जाते हैं तो रियाजुल जन्ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और रोज़े के बीच की जगह है, वहाँ भी हुक्म है कि आप दो नफिल पढ़ लें, ये जन्नत का टुकड़ा है असल में। वो वहाँ लोग जाके सुबह जाते हैं और छुप छुप के बैठे रहते हैं, निकलते ही नहीं है। ये अच्छी नेकियाँ नहीं है। हम क्यों करते हैं? ताकि जाके सुनाएं। क्या बताएंगे लोगों को, हाय हाय मैंने वहाँ जाके नफिल भी नहीं पढ़े। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो नेकी करो अल्लाह के लिए करो और सारी नेकियों में भड़ के वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरा ज़ाद तक़्वा, और ज़ाद सफ़र साथ लेकर जाया करो, जबकि बेहतरीन ज़ाद सफ़र तक़्वा है। ज़ाद सफ़र क्या होता है? वो चीज़ जो बंदा सफ़र में साथ लेके जाए। मसलन अगर यहाँ से आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं और आपको पता चलता है कि रास्ते में खाना पीना नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आप कुछ खाना पीना साथ ले जाएं, कोई बिस्तर ले जाएं, कुछ पानी साथ ले जाएं। अब अरबों में जो हज की बिदात आई थी ना, उसमें एक बिदत ये आ चुकी थी कि वो हज के लिए जब निकलते ना साथ कोई सामान ना लेते, ना पैसा, ना थैला, ना सामान। ख़ास तौर पे यमन के जो लोग थे वो बग़ैर तोशे के आते और इसको बड़ी नेकी समझते हैं। कोई पूछता भाई कुछ पैसा रखा, कोई खाना, कहते थे जी अल्लाह के घर जा रहे हैं वो खुद ही देगा। आज भी कुछ लोग हैं पता नहीं कहाँ से किराया जमा करके जहाज़ों में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके फिर मांगना शुरू हो जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं। ये कतन पसंदीदा अमल नहीं है। हज की जो पांच बुनियादी शरायत हमें मिलती है ना, उसमें सबसे पहली शर्त क्या है लिख लीजिएगा, बालिग होना। यानी हज किस पे फ़र्ज़ है? जो बालिग है, प्यूबर्टी की एज पे है। जो अगर किसी ने बचपन में हज किया हुआ है ना, तो उसको बालिग होने पे फिर करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा बच्चे कर लेते हैं माँ बाप के साथ, उसका भी सवाब मिलेगा माँ बाप को इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चा तो हज से पाक, सवाब और गुनाह से पाक होता है, लेकिन माँ बाप को बहरहाल उसका अजर मिलेगा। तो पहली चीज़ बालिग होना, दूसरी चीज़ है मुसलमान होना। इसलिए जो भी मुसलमान होगा उसको हज करना पड़ेगा। हो सकता है किसी ने पहले कुफर के दौर में हज किया होता उस दौर में, तो उसको मुसलमान होने पे करने पड़ते। तीसरी शर्त क्या है कि वो आज़ाद हो। उस दौर में ग़ुलामी का रिवाज था, तो ग़ुलाम को अगर आका इजाज़त नहीं देता तो ज़ाहिर है वो हज नहीं कर पाएगा, तो अल्लाह ताला ने फिर उसको हज से आज़ाद कर दिया। दोबारा बोल देती हूँ, बालिग होना, मुसलमान होना, आकिल होना, यानी क्रेज़ी ना हो, मजनू है, दीवाना है, समझ ही नहीं, होश ही नहीं, ऐसे ही बेकार यानी इधर उधर फिरता है, उस पर हज फर्ज नहीं है। और फिर उसके बाद आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। और पांचवी चीज़ क्या है? इस्तेतात रखे। इस्तेतात का मतलब क्या है? नंबर एक, तंदुरुस्त हो, रास्ता महफूज हो, पीछे घर वालों का अहलो अयाल का खर्च छोड़ के आए। ये नहीं कि बीवी बच्चे भूखे मरें, किराए पे मतलब वो कर्ज़ ले रहे हैं, पता ही नहीं किधर है, और ये हज पे चले जाएं, ऐसा कतन भी जायज़ नहीं। और इसी में फिर रास्ते का खर्च भी है, टिकट के पैसे हों, वहाँ रहने के पैसे हों, सफ़र की तकलीफ़ें हों उसमें हो। इनमें से अगर कोई एक भी शर्त हटती है ना, तो उस बंदे पे हज फ़र्ज़ नहीं। ये पांच शरायत औरतों और मर्दों में मुश्तरक है। एक शर्त एक्स्ट्रा, यानी आप कह लें कि औरतों को अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा हकूक़ दिए हैं, इसमें एक शर्त एक्स्ट्रा है, और वो क्या है कि औरत के साथ उसका महरम भी हो जो उसका वहाँ ख्याल रख सके। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त नहीं पूरी हो रही, तो ऐसा बंदा इंशाल्लाह गुनाहगार नहीं है। वहाँ जाके दूसरों को मुश्किल में डालने से बेहतर है कि वो घर पे रहे, सब्र करे। हाँ, जिस्मानी का माजूर है कोई शख्स, पैसा है, बाकी चीज़ें, तो वो हज बदल करवा सकता है, दूसरों से करवा ले, खुद जाए तो फिर अपने सारे इंतज़ाम जो हैं वो करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ाद सफ़र लिया करो, और बेहतरीन ज़ाद सफ़र क्या है? तकवा। इसीलिए कहा वत्तकूनी वत्तकूनी, मुझसे डरो ऐ अक्लमंदो। आप देख रहे हैं अल्लाह ताला हर इबादत के साथ तकवा की स्टैंप लगा रहे हैं। मुश्किल हो या आसान काम हो, करो अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह का कुर पाओ। बाज़ लोग हज करके आ जाते हैं और उनको बिल्कुल तकवा नहीं नसीब होता। आप ये कह सकते हैं कि किसी के हज की कबूलियत का क्या क्राइटेरियन है? मसलन आप में से भी हो सकता है कुछ लोग हज करके आ चुके होंगे। हज करने के बाद कैसे पता चले कि हमारा हज कबूल हुआ है कि नहीं? लोगों ने तो इसकी मनगढ़ंत बातें बनाई हुई हैं। किसी ने मुझे कहा कि हज करके जब वापस आए तो आंखें बंद करें, फिर क्या होगा? आपके जहन में सुर्ख रंग का लफ्ज़ लिखा रहा है अल्लाह का या नीला? भाई क्यों, इससे क्या होगा? नहीं, अगर सुर्ख रंग का अल्लाह लफ्ज़ लिखा आ रहा है ना, तो इसका तो आपका हज कबूल हो गया। और अगर नीला लिखा आ रहा है तो गोया के कबूल नहीं हुआ। असल में ये साइंस जानती होंगी, आपको पता है कि मेडिकल में दिल की जो गंदी रगे होती है ना, दिल से जो वेंस निकलती हैं जिनमें गंदा खून होता है उसको ब्लू शो करते हैं, और जो साफ खून होता है उसको सुर्ख कहते हैं। मन गलत बातें, कोई कहता है उनसे दुआ करा लो, 40 दिन तक दुआएं कबूल होती हैं, इसमें से कोई चीज़ हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती। असल चीज़ जो आपके पास एक मेयार है, और वो क्या है कि जब आप हज करके आए तो आपका दिल बदल चुका हो। आप जिस दिल के साथ गए थे ना, वो हज नहीं है। आप जिस दिल के साथ गए थे ना, अब आप वो दिल लेकर नहीं आए। पिछली आयत के हिस्से से देखें तो पता चलता है तकवा से मुराद है कि सवाल से बचो। सामान लेके नहीं गए, वहाँ जाके मांगने लगते हो, ठांगने लगते हो, ये दुरुस्त बात नहीं। और अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ इससे मुराद क्या है कि वहाँ से आने के बाद अब तुम्हारा दिल गुनाहों में लगे ना, तुम्हें नेकियों का शौक़ हो जाए। अगर पहले सिर्फ नमाज़ पढ़ते थे तो अब तुम जमात से नमाज का इख्तमाम करो। पहले नमाज बोझ समझ के पढ़ते थे तो अब नमाज को तुम एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत एक सआदत समझ के करो। जितना इंसान तकवा के साथ हज करेगा, वहाँ डर लड़ेगा नहीं, वहाँ अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेगा, उतना अल्लाह ताला उसका दिल बदलेगा। और यकीन करें कि सिर्फ एक हज आप शऊर से कर लें, ये हज आपको मौत का सफ़र याद दिलाता है। हमने रब का पैगाम मेरे का नाम जो क्लास में जब ये आयात की तो बहुत डिटेल से इसको क्या था, अगर आप मुमकिन हो तो सुन लें, वेबसाइट पर भी होगा, कि रिलेट किया था कि हज का सफ़र लम्हा लम्हा मैयत के सफ़र के बराबर है। थोड़ा सा अगर हम टच अभी भी टच करके देखें, आप देखिए कि जब हज पे जाना होता है तो तैयारी होती है, लोग अपनी अमूमन चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसी तरह जब कोई बंदा दुनिया से जाता है तो अपनी यहाँ की सारी चीज़ें छोड़ देता है। हज के लिए अहराम बांधा जाता है, जो सफ़ेद चादरें हैं दो। इसी तरह जब कोई मरता है तो हम उसको कफन में लपेटते हैं। पीछे कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन हाजी अपने साथ थोड़ा सा तोशा लेके जाता है, बार दफ़ा चप्पल और खुले चंद कपड़े। इसी तरह हम अपनी कब्रों में सिर्फ वही लेके जाएंगे ना। फिर जब यहाँ हज के लिए जाना होता है तो अमूमन लोग जमा हुए होते हैं। इसी तरह जब कोई मरता है तो उस दिन भी बहुत सारे रिश्तेदार उसके जमा हुए होते हैं। फिर हज के अहराम के वक़्त बांधने वक़्त दो नफिल पढ़ना मसनून है, तो आप देखिए कि जब मरता है कोई तो उस वक़्त उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। फिर आप देखिए सारे प्यारे बच्चे बीवी घर वाले इधर रह जाते हैं, आप अकेले जहाज़ में बैठ जाते हैं। इसी तरह मरने वाला कब्र में अकेला डाल दिया जाता है। फिर यहाँ आप आते हैं तो यहाँ आपको सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, जो मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जो जहाज़ों का या जाने का। इसी तरह मरने वाला जब आता है तो कब्र में उससे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इधर सामान वज़न तोलता है, इसी तरह उधर भी वज़न तोलता है। यानी वो सारे मरहले हैं हज के। कब्र में भी सवाल जवाब है, मन रब्बू का मन दीनू का। इसी तरह हाजी जूँ ही मीकात से ऊपर जाता है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहता है। फिर इसी तरह हज के बाद कितने मरहले हैं, इसी तरह मरने के बाद मरहले हैं। आप सोचें तो बिल्कुल एक हज अगर आप शऊर से करके आ जाएं, आपका दिल नहीं लगेगा गुनाहों में। लेकिन जब लोग सब कुछ साथ लेके जाएं, नई जूतियाँ, नए कपड़े, मैंने किसी को ये तो बहुत सारों को देखा है, एक को देखा है कि नए टचिकेस खरीद रहे हैं। मैंने कभी क्या मसला करे, वो हज पे जा रहे हैं ना, तो भाई ये सूटकेस है ये नहीं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, नए सूटकेस लेंगे। अरब लोग आपको पता है नेकेड हज करते थे, सूरत अल-अराफ़ में जाके पढ़ेंगे आप, बिल्कुल मादरजात नंगे, औरतें जिस्म पे सिर्फ चमड़े का एक टुकड़ा बांध लेती शर्मगाह पे। और तावील क्या थी, शैतान कैसी अकल सिखाता है, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं हम इन कपड़ों में अल्लाह के घर नहीं जाएंगे। आप कोई देखे कि माशाल्लाह वाह वाह क्या नेकी का जज्बा है, और मादरजात नंगे जाके हज करते थे। अल्लाह ने कहा कपड़े पहन के हज किया करो। इस तरह हज उनके यहाँ बेरूह हो चुका था, बिल्कुल रूख ही फीकी नेकियाँ थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तज़व्वदू, सब कुछ लेके जा रहे हो, अपना पासपोर्ट लेके जा रहे हो, तुम अपना वीज़ा चेक कर रहे हो, तुम अपने कपड़े लेके जा रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तकवा को भूल जाओ, जो सूटकेस में नहीं जो दिल में रखा जाता है। तुम अपने दिल के वॉलेट में तकवा साथ लेकर जाओ, और तकवा वो करेंसी है जो वक्त पे कन्वर्ट होती है सब्र में। शिकवे ना करना, बर्दाश्त करना, ठंडा मिजाज रखना, मोहब्बत करना दूसरों से, फिर देखो तुम कैसा हज करके आते हो। आप देखिए कि तकवे के साथ साथ बंदा जब हज करता है ना तो वक्त ज़ाया नहीं करता। कैसे पता चलता है कि इंसान ने तकवे के साथ हज किया है? तो उसकी एक बहुत बड़ी निशानी आप अपने लिए मुकरर कर लें कि मैंने वहाँ बाज़ारों में वक्त ज़ाया नहीं करना। हमारे यहाँ भी जो बिदात हज की आ चुकी हैं उसको अगर सामने रखें तो वाकई लगता है कि खाम खा का एक बोझ रखा हुआ है। पहले तो मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती कि जो हज कर लेता है उसके नाम के साथ हाजी क्यों लगाते हैं, फिर जो दो कर लेता है तीन जमा तो अलहाज लगा देते हैं। वैसे जमा आती हो ना हाजी की, ये अलहाज हो गए। क्या नमाज़ पढ़ने वाले को हम नमाजी का टाइटल देते हैं साथ? आप रोज़े रखती हैं तो आपके नाम के साथ रोज़े रखने वाली या साइमा का लफ्ज़ आता है? पता नहीं क्यों कहाँ से ये बिदअत आई, ये तो जी हाजी साहब है। और बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं जी हाजी साहब हैं हम। जिस तरह हाफ़िज़े कुरान का एक टाइटल हाफिज़ बन जाता है, और बाद लफ्ज़ हाजी जो है ये एक टोकन बन जाता है कि ये जी ईमानदारी होंगे, हाजी साहब हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ की जो बिदात है, हज पे जाने वाले जोड़े दिए जाते। भाई ये कहाँ से आया क्या आपको नमाज़ पढ़ने के किसी ने जोड़े दिए हैं जी? कपड़े देने हैं, फिर बाज़ लोग बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके आते हैं। वो वजह शायद ये होती है कि हमें याद रखना वापसी पे भी। एक खातून थी, कहती हज में गई तो हर तवाब में ये सोचती रहती थी किसने क्या दिया हुआ है और किसको क्या देना। जाते हुए वो जोड़े देते हैं, फिर आते हुए ये गरीब बेचारे वहाँ से तोहफे लेके आते हैं। चलिए वहाँ से भी जो लाते हैं उसमें भी कबाहत देखें बाज़ारों का। कई खवातीन ऐसी हैं जो नमाज़ सिर्फ इसलिए वहाँ जमात से नहीं पढ़ती कि नहीं अभी रश टूटा हुआ है तो हम शॉपिंग कर लें, हमने जाए नमाज़ ख़रीदने हैं, तस्बीहें ख़रीदनी है। पत्ता को नहीं, अकल करो या उली ललबाब, अकल की तुम नमाज़ छोड़ रहे हो। 1,00,000 नमाज के बराबर है हरम की एक नमाज़, उसको तुम छोड़ के और जाए नमाज और तस्बीहें ख़रीद रहे हो। और एक खातून थी, उनसे किसी ने कहा कि आप इतनी जाए नमाजें को क्या करेंगी? कहती जी इतनी नहीं है, पाकिस्तान में 6-7 हज़ार रुपये की छोड़ के आई हूँ ख़रीद के। क्या कह के देंगी वो लोगों को कि मक्का से लाई हूँ? फिर लोग भी चूमते हैं, फिर जब देखते हैं ना मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है तो छुपाते फिरते हैं। ये सिर्फ रस्म है, इतना बोझ लाद के शपे। और बाज तो एक और बिदत बना के बैठे हुए कि जी वहाँ से सोना ज़रूर ख़रीदना है। और बाज़ औरतें भोले भाले मर्दों को बेवकूफ़ बनाती हैं, मक्के का सोना बड़ा बबरकत होता है, ये बड़ा बरकत वाला है। फिर ससुराली रिश्तेदारों के लिए तो ज़रूरी को सोने के टॉप्स और बटन और चूड़ियाँ जानी है। बाज़ औरतें तो हज पे जाती चूड़ियाँ बदलवाने हैं कि अब मैंने चूड़ियाँ बदल के आनी है। आप देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा शायद अब गोल्ड की दुकानें आपको दिखेंगी। ठीक है अगर एक ख़ास हद तक के ठीक है, लेकिन इन्हीं चीज़ों में पड़ गए तो करना क्या? फिर वापस जा रहे हैं तो अब हाजियों की दावतें हो रही हैं। अब ये बेचारे उनको वहाँ से चीज़ें ख़रीद के झूठ बोल बोल के दे रहे हैं कि जी हम मक्का से लाए हैं। पत्ता को नहीं, ये तकवा नहीं है, सारा खर्च ज़ाया हो गया अगर आपने झूठी चीज़ दे दी। ज़्यादा से ज़्यादा जमज़म, देखिए दुनिया की हर चीज़ हर जगह से मिलती है, जमज़म नहीं मिलता। अब तो वो मिल जाता है, लेकिन चले सौगात समझ के आप जमजम ले जाएं, खजूर ले जाएं, थोड़ा बहुत बंदा कर ले। इसके लिए ना तो आप एक इसको हराम कह सकते हैं, लेकिन ना इसको रसम बनाएं। जहाँ रसम है वहाँ तोड़ें इसको, सवाब होगा। बाद लोग इन्हीं बंदिशों की वजह से हज नहीं कर पाते कि आके इतनों को देना है। मैंने खुद देखा है बाज़ ख़वातीन हज पे जाने से पहले खूब शॉपिंग करती हैं कि घर भर के जाएँ ताकि आते ही फिर तोहफे देने हैं तो वहाँ से ना लेके आने पड़े। ये चीज़ दुरुस्त नहीं, ना किसी से तवक्को रखे कि कोई आपको कुछ दे और ना किसी को तवक्को लगाए दिलाए। मुझे किसी ने कहा कि मैं ये रस्में तोड़ना चाहती हूँ ना, कि मैंने कोई हज से आके तोहफा नहीं देना लेना, ना कोई मुझे दे, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं। देखो जो आ रहा है जोड़े दे रहा है, जो आ रहा है जोड़े दे रहा है, तो अब मैं क्या करूँ फिर? मैंने कहा देखें बहुत आसान है इस रस्म को तोड़ना। कहती क्या? मैंने कहा जो दे रहा देने दे, ले आए जाने दे, वापस आके आप किसी को एक गज कपड़ा भी ना दें, अगली दफ़ा आप हज पे जाएंगे आपको कोई भी नहीं देगा, रस्म टूटेगी। कहती नहीं फिर ये तो बुरा लगता है ना, अब लिया हुआ है तो देना। मैं कहा यही तोड़े आप, आपको दे जिस दे देना है देता रहे, फिर मैं तो नहीं ले रही, देना दो, मैंने आके तुम्हें एक दुपट्टा भी नहीं देना, कोई भी नहीं तुम्हें देगा। रस्में हमेशा वहाँ टूटती हैं जहाँ बंदा जुरत लेता है। कोई बात नहीं, फिर किसी मौके पर दे देंगे, ज़रूरी है कि अभी देना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें ये पैगाम दे के कि देखो हज से इबरत सीखो, देखो कैसे पाँव पर चलते हो। मैं कहती हूँ इंसान ने अपनी असल औकात पहचाननी है ना, तो हज करके आए। आप यहाँ जो बेगम साहिबा बने हो, कोई आपको टीचर के कोई उस्ताद के, वहाँ लोग आपके पाँव पे पाँव रख के चले जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि दर्द हुई है कि नहीं। जब अपना सामान उठा के चलना पड़ता है, जब मीना और मुजदलफा के सफ़र करने पड़ते हैं, बंदे को पता लग जाता है। और अरफात का दिन तो बंदे को हकीकत में तोड़ के रखता है। तो लिहाजा हज ऐसा कीजिए कि जिसके बाद वाकई आपका दिल बदल जाए। कैसे लोग हैं कि वहाँ तो दो जोड़ों में 3-4 दिन तक रह लेते हैं, वहाँ तो उनको बिल्कुल रूखी सूखी ठंडी गर्म दे दो खा लेते हैं, यहाँ आते फिर नखरे शुरू हो जाते हैं। वो हज नहीं है, हज वो जो बंदे का दिल बदल दे। फिर आगे एक और रस्म थी इनकी जिसको तोड़ा जा रहा है, फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर कोई गुनाह नहीं। किस बात में? कि अन तबतहु फतलम मिन रब्बिकुम, कि तुम तलाश करो फजल अपने रब का। अच्छा, यहाँ बात पूरी होगी तो मैं भी रोक के बता देती हूँ आपको। जब हज की खराबियाँ शुरू हुई मक्का वालों में तो एक्सट्रीम पे चले गए, कुछ तो एक्सट्रीम में बहुत सख्त हुए और कुछ बहुत ही ज़्यादा नरम हो गए। उनमें एक बिदत ये आ गई कि हज के दौरान तकवा की जब बात हुई तो उन्होंने ये बात समझ ली कि अगर किसी किस्म की कोई तिजारत, कोई ट्रेडिंग, कोई फ़ायदे की चीज़ की जाती है तो वो मना नहीं। एक तरफ तो हज बिल्कुल एक तिजारती मेला बन चुका था, लोग खूब कारोबार चमकाते, दो तरह से वो वहाँ ख़राबी करते थे। असल में अगर आपने हज किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जो बुनियादी तौर पे दिन 3 होते हैं मीना के, जिसमें असल में बंदा गर्मी से भी थकता है, कहीं पत्थर मारने हैं, कहीं जाके आपको तवाफ़ करना है, मतलब बहुत कसम पुरसी की कैफियत होती है। और इतने इंतजाम होने के बावजूद आज भी वहाँ खुले मैदान में ही आपको बैठना होता है। खेमे अब तो लग गए, काफ़ी सहूलतें भी हो गई। ये वक्त असल में बंदे की अन्ना तोड़ने के। मक्का वाले क्या करते थे कि जब ये हज का दिन हो जाता था, 9 ज़िलहज, फिर 10, 11, 12 जो दिन थे, ये मीना में जाके खूब अच्छे बैठ के लगाते, मेला करते, खाना पीना, फिर शायर आते, उनकी बातें होती, अपनी कहानियाँ सुनाते, कोई बाप दादा के किस्से सुनाते। इस तरीके से हज की जो वो रूहानियत थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और लोग वहाँ जाके बड़े बड़े काम कराते, और कुछ लोग वहाँ स्टॉलिंग करते, अपनी चीज़ें बेचते और कमाते खाते। अब जब ये तकवा की बात हुई तो सहाबा के दिल में ये सवाल उठा कि क्या हज के दौरान कोई तिजारत या कोई माली फ़ायदा नहीं लिया जा सकता? तो अल्लाह ताला कह रहे लैसा अलैकुम जुनाहुन, नो प्रॉब्लम, ले सकते हो। डोमिनेंट ख्याल क्या हो कि हज करना है, अल्लाह को खुश करना है। फिर कभी कोई गया हुआ है वहाँ, कोई अपने मुल्क से कोई खजूरें ले गया कि वहाँ बेच दूँ, या वहाँ ख़र्चा पूरा करने के लिए किसी ने अगर कोई रेड़ी लगा ली, कोई हर्ज की बात नहीं है। वो फतलम में रब्बी को, यहाँ से आप देखिए कि दीन और दुनिया को साथ साथ लेके चलने का हुक्म है। लेकिन ये नहीं कि अंदर हरम में फ़र्ज जमात हो रही है और तुम बहर चीज़ें बेच रहे हो। अल्लाह का दीन और दुनिया साथ कब चलती है कि जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने कहा है कर लो तो कर लो, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन जहाँ तक तुम्हें रोका जाता है वहाँ पर रुक जाओ। जितना तुम उस वक़्त अपने आप को अल्लाह के हुक्मों पे चलाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ इजाज़त दे दी कि कोई हल्का फुल्का सा काम अगर कोई कर लेता है कोई हर्ज की बात नहीं। मतलब देखिए, कोई यहाँ से जाता है हज के लिए और उसकी बेटी रहती है जद्दा में, ख्वाहिश क्या है कि मैं बेटी को भी मिल लूँगी और हज भी कर लूँगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। इस्लाम रिजिड नहीं है, यहाँ से आपको इस्लाम का मिजाज दिखेगा, बहुत मॉडरेट रिलीजन है। डोमिनेंट अल्लाह का दीन हो, उसका गलबा है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें वो बात की बात है। अब दूसरी बिदत की तरफ इशारा है कि फ़ाइज़ा अफ़त तुम मिन अरफातिन, और जब तुम लौटो अरफात में से। अरफात असल में वो मैदान है जहाँ 9 ज़िलहज को हाजी जमा होते हैं, और इस एक मैदान के अंदर हाजिर होना लाजिम है। सुबह से लोग निकलना शुरू होते हैं, मगरिब की नमाज तक वहाँ खड़ा होना होता है, और मगरिब से पहले ही फिर निकलते हैं जाके आगे मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी होती है। और अरफात का लफ्ज़ अरफा से है, कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ आदम और हव्वा मिले थे। आसमान से जब इनको जन्नत से गिराया गया था ना, तो ये फिर दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर रहे, और होते होते ये मैदान अरफात में मिले थे। इस मैदान से इसको अरफात जानी जानी पहचानी जगह कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि यहाँ मैदान हशर कायम होगा, इसीलिए इसको अरफात कहने की एक तीसरी रीज़न भी है कि यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आए हुए एक दूसरे को पहचान लेते हैं, यानी रंग रंग के मुसलमानों से आप मिलते हैं। इसमें खड़ा होना असल में नेकी है। आप सूरज ढलने से लेकर जोहर और असर की दोनों नमाज़ें जमा करके पढ़ते हैं कसर के, और फिर असर से मगरिब तक स्टैंडिंग तौर पे मांगनी होती हैं, जो हज का बड़ा एक रुकन है। जो उस दिन अरफात के मैदान में नहीं जाएगा उसका हज नहीं होगा। किसी वजह से अगर वो रुक गया और बहुत चॉइस, बहुत आखिरी चॉइस जो है कि मगरिब के बाद भी अगर पहुंच जाए तो इंशाल्लाह होगा, लेकिन उसके बगैर हज नहीं होता। अब वहाँ करना क्या होता था कि काम करो, फिर रात को उठो, اور جا کے مشعر حرام وہ جگہ ہے جس کو آج کے دور میں ہم مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی اس نام کی، تو وہاں جا کے بس کرنا کیا ہوتا ہے، سو جاؤ. اور حقیقت میں انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ جاگنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. ہم جب گئے تھے حج پہ تو پیدل گئے تھے عرفات سے مزدلفہ، کیوں کہ گاڑیاں اور ٹرینیں اس طرح گاڑیاں اور بسیں تھیں اتنی اسٹاک تھی کہ وہ ہم سے بعد میں پہنچی. ہم بس پہ تھے، پھر ہم اتر گئے کہ یہ تو لگتا ہے کہ 4 میل لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو رات پوری ایسی لگے گی. تو ہم اپنی بس سے اتر کے واک کرنی شروع کر دی، اور شاید 2-2.5 گھنٹے میں ہم واک کر کے پہنچ گئے اور بسیں ابھی نہیں پہنچی ہوئی تھیں. تو رات 2-2.5 جو بھی ٹائم ہوتا ہے، پھر وہاں جا کے حکم یہ ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھو. دیکھیے عقل میں آتی نہیں ہے کچھ باتیں حج کی. عام طور پہ ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے کو، یہی ہے نا، ایکسٹرا نمازیں پڑھ لو، تسبیح نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو. آپ حج کو دیکھیں گے نا تو کوئی خاص عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اکثر جگہ 2-2-4 کی بجائے 2-2 فرض ہیں. اب یہ حج کے دن کو آپ امیجن کریں، اگر آپ حج پہ نہیں گئی ہوئی یا آپ نے کبھی پڑھا نہیں کچھ، تو آپ کے دن میں حج کا کیا تصور آئے گا؟ شاید سارا دن مصلی پہ بیٹھنا پڑے گا. ایسے ہی آتا ہے نا، میرے تو دن میں یہی آتا تھا لٹرلی. جب میں نے دیکھا، آپ امیجن کریں نا، صبح اٹھ کے آپ نکلتے ہیں جی، جلدی سے سب چلے مینا، ہم نے آج مینا جانا ہے اور وہاں سے آگے عرفات میں جانا ہے. ایک بھگدڑ ہراس مچی ہوئی ہے، بس نہیں آئی، کفیل نہیں، لوگ نہیں، ہٹ کرتے کرتے پورا دن گزرا گزرا ہے، مغرب ظہر کا وقت آگے نہیں پڑ رہے. اب وہاں پہنچ گئے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، گرمی بھی ہے، کوئی نماز کچھ عبادت نہیں. پھر حج کا خطبہ شروع ہوتا ہے اور ظہر اور عصر 2-2 رکعت کر کے پڑھے، پھر فارغ. یعنی کوئی عبادت نام کی چیز ہی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود کھڑے ہو جاؤ، فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، دعائیں مانگو، رو دھو، اپنی خواہشات اس کے سامنے رکھو. عند المشعر الحرام، جب تم مسجد حرام کے پاس پہنچ جاؤ. اور وذکروہ کما ہداکم، اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت دی. یہ وہاں جا کے باپ دادا کے قصے شروع کر دیتے تھے، بڑائیاں مارتے تھے، میرے خاندان نے یہ کیا، ہم نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، میری اتنی جائیدادیں ہیں، میرے اتنے بنگلے ہیں، اس طرح کی بھڑکے مارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھو ہوش کرو، باپ دادا کو چھوڑو بلکہ اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں یہاں لے آیا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، سوچو اس سے پہلے کیا تھے، پھٹکے ہوئے تھے نا، کچھ بھی تو تمہیں جینے مرنے کا انداز نہیں پتا تھا. کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے کہ اس نے تمہیں نئی زندگی دی، تمہیں ایک ہدایت والی زندگی دی؟ اللہ کو یاد کرو. اور اس دن کا سب سے پیارا جو عمل ہے نا، وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے. اور اس وقت واقعی بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی. کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے ٹوٹا ہوا پاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا، ثم افیدو من حیث افاد الناس، پھر وہاں سے پھر کے تم بھی چلو جہاں سے لوگ پھرتے ہیں. یا پھر ایک دلچسپ بدعت ہے ان کی، قریش جو تھے نا، ان کو گمان کیا تھا کہ ہم بہت اونچی نسل سے ہیں. جیسے کسی بھی خاندان میں کوئی چودھری بن جائے، کوئی کہہ دی ہم شیخ صاحب ہیں. سارے لوگ جاتے تھے میدان مطلب عرفات سے مینا میں، پھر مزدلفہ میں، یعنی سارے ریچول کرتے تھے. لیکن جو ان کے بڑے خاندان کے لوگ تھے نا قریش کے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم مینا سے عرفات کو جائیں اور مزدلفہ میں آئے. لیکن قریش کہتے تھے کہ ہم تو بس جی وہیں سے پلٹ آئیں گے، عرفات سے واپس چلے جاتے تھے مکہ. ایسے وی آئی پی لانچ، جو سب کر رہے ہم وہ نہیں کریں گے. اب ان کو دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ قبیلہ خزاعہ اور بنی قنانہ کے قبیلے بھی کہنے لگے، ہم کس سے کم ہیں. خاص طور پہ جب قریش کے خاندان میں ان کی شادیاں ہونے لگ گئیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ قریش اور اس کے حلیف قبیلے جو تھے وہ واپس آ جاتے تھے عرفات سے، سیدھا واپس کہتے تھے ہمیں وہاں نہیں جانا جہاں سب جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج تو یہی سکھاتا ہے کہ سب برابر ہے، اکویلٹی. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، سارے بت توڑو اور چلو تم وہیں سے جہاں سب جاتے ہیں، اور تم سب کو وہی کرنا پڑے گا جو باقی لوگ کرتے ہیں. تو وہاں سے چلو گے واپس، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوسروں کے برابر اجر دے گا. واستغفر اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے بخشش طلب کرو، جو غلط کام کر چکے ہو اب اس پہ معافیاں مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. خلاصہ کیا ہے کہ حج میں کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کہ محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. अब मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझें कि आज के दौर में किसी मुल्क का सदर जो है वो हज पे जाए, तो वो कहे भाई मुझे अब अरफात से फिर लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर मुज़दलिफ़ा जाऊँ, फिर रात बसर करूँ, फिर 3 दिन तक मीना में रहूँ, नहीं बस जी मैं अरफात से आया और चल पड़ा सीधा। तो ये एक तकब्बुर की बात है, ये प्रोटोकॉल अल्लाह के यहाँ नहीं चलते, इसीलिए यही तो तोड़ने के लिए अल्लाह ताला वहाँ इंसान को भेजता है। तो इसी बात की दावत देकर अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि देखो तुम मुझसे पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग लो, तुमने जो कुछ किया है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। फिर इसके बाद अगली आयत वही है जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़े से मुख्तलिफ लफ्ज़ों में यहाँ बयान किया गया। फ़ाइज़ा क़दैतुम मनासिककुम, और जब तुम हज के अरकान पूरे कर लो अपने, फ़ज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो अब अल्लाह का ज़िक्र उस तरह करो जैसे अपने बाप दादा का करते हो, जैसे बाप दादा का ज़िक्र करते हो, और औ अशद्द ज़िक्रा, या उससे भी ज़्यादा ज़िक्र करो। बड़ी प्यारी बात है ये कि तुम बाप दादा की बड़ाइयाँ बयान करने की बजाय वहाँ बैठ के लगाने और टोलियों में बैठ कर फ़ख्र जतलाने की बजाय अल्लाह की याद करो और उससे भी ज़्यादा करो। लेकिन अगर तुम देखो कि ऐसे वक्त में तुम अल्लाह ताला के सामने बड़ा बनना चाहते हो तो अपनी दुआओं का रुख देख लो। बड़ी खूबसूरत सी आयत आ रही है आगे कि जब कोई बंदा अल्लाह के घर में जाए तो वहाँ जाके कहता क्या है, दुआओं का तस्करार है। फमिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलु रब्बना आतीना फिद दुनिया, जो ये कहता है कि हमारे रब हमको तो दुनिया में ही दे दे, क्या जो भी देना है। कहा ठीक है। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इंसान अपनी दुआओं के आईने में ख़ुद को पहचाने, हमारे दिल में जो चीज़ बैठी होती है ना हम उसी की दुआ मांगते हैं। कुछ लोग जाते हैं हज पे और नियत क्या करके जाते हैं घर से, बेटा लेके आना अल्लाह से। कोई कहता है ये हैंडीकैप बच्चा है, हज कराते हैं ये ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सिर्फ ये सोच के हज करने जाते हैं कि हज करेंगे तो बच्चियों के रिश्ते हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन याद रखें कि हज या हज पे मांगी हुई दुआएं सिर्फ दुनिया की दुआएं नहीं होनी चाहिए। आप ख़ुद भी आजमा के देखिएगा, कभी भी कोई आपको हज पे जाते वक्त आपसे अगर कोई दुआ कराता है ना तो अमूमन उसमें दुनिया की दुआएँ होती हैं, बच्चों के रिश्ते, ये हालाँकि ये सब जायज़ है, लेकिन सिर्फ दुनिया ना मांगो। अक्लमंदी क्या है, वَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, और बास तो ऐसे हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फ़ि दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे, वफ़िल आखिरति हसना, और आखिरत में भी भलाई दे, वक़िना अज़ाब अन्नार, और हमें अजाब से बचा दे आग के। ये है एक बैलेंस रवैया कि जो लोग हकीकत में अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं अल्लाह ताला उनको दोनों दे देता है। यह हम बात दो बातों पे बात करेंगे। नंबर एक कि दुनिया के साथ आखिरत मांगना ये एक पसंदीदा अमल है। मसलन आप देखिए कि दुनिया की नेमतें आप मांगे, खूब मांगिए, मना नहीं है, औलाद के लिए मांगे, अपने लिए मांगे, माँ बाप की, कारोबार, जायदाद, रिश्ते, अल्लाह से तो मांगना है। हदीस में आता है कि बंदा मोमिन का तो तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगता है। लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी, आखिरत भी मांगें, उनकी बख्शिश मांगें, अपनी बख्शिश मांगें। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही खूबसूरत है वो है लफ्ज़ हसना। इसको देख लीजिए, हसना क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके ना, हुसन, मुहसिनीन, मुहसिना, एहसान, खूबसूरत चीज़ को कहते हैं। अब जब हम दुनिया में अल्लाह ताला से हसना मांगते हैं तो हसना क्या होगी, हर वो नेमत जो अल्लाह की रज़ामंदी के साथ हमें मिले। अब आप बताइए क्या हराम माल हसना होगा। मसलन एक शख्स काम करता है और शराब बेचता है, क्या दुआ करेंगे आप उसके लिए कि अल्लाह इसका कारोबार खूब चमके। क्या कहा आपने अल्लाह से कि अल्लाह शराब खूब बिके। तो रिस्के हराम कभी हसना नहीं होता। बज़ाहर कितना ही पनपता क्यों ना दिखे, रोज़ आपके हाथों में हज़ारों आए, यकीन करें लाखों चले जाएंगे, पूरी नहीं पड़ती। इधर हसना कहकर हम बताते हैं अल्लाह को कि अल्लाह दुनिया में माल दे, लेकिन वो ना देना जिसमें नाफरमानी हो। बस दफ़ा इंसान जो कमाता है ना उसका 98% हसना होता है, 2% हसना नहीं रहता। तो उसको आप समझ लें कि ये पानी का गिलास है, अब ये सारा पानी हसना है ना, सिर्फ इसमें एक ड्रॉप कीचड़ के पानी के डाल दे, कोई पेशाब के डाल दे, तो क्या ये ग्लास फिर हंसना रहेगा? ये सारे गिरेगा ना। कोई के क्या उतने को निकाल के फेंक दे, नहीं इस पानी में मिल गया। आप में से कोई इमेजिन कर सकता है कि हमारे सामने कोई इसमें एक कतरा इसमें पेशाब का डाले और बाद में आपको पीने को दे और आप पी लेंगे? एक मिनट में डिसॉल्व होगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है शैतान का। और वो क्या है, यहाँ का तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं देखी, इसीलिए मैं ये मिसाल दे देती हूँ खुल के। कई और मुल्कों में मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ उसको बोलते हैं कन्वीनियंट स्टोर्स, यानी जैसे गैस स्टेशन है ना, जो डिफरेंट गैस पेट्रोल को कहते हैं अमेरिका में ना, तो हर पेट्रोल पंप पे एक छोटा सा स्टोर होता है, उसको वो कहते हैं कन्वीनियंट स्टोर। उसमें आम कन्वीनियंस की हर चीज़ होती है जो सफ़र में ज़रूरत पड़ती है, सिगरेट वगैरह भी, जो भी चीज़ होती है। अब उन कन्वीनियंट स्टोर्स का बहुत बड़ा मसला शराब है। उन्होंने सब कुछ ग्रोसरी रखी होती है लेकिन एंड पे शराब रखी होती है। ये एक मारूफ चीज़ है वहाँ की। अब दुख की और तकलीफ़ की जो बात है ना, जो मैंने खुद पिछले कई साल में देखी कि शायद 90% ग्रोसरी स्टोर्स और ये कन्वीनियंस स्टोर्स ओन्ड बाय मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स की। होता क्या, आते बेचारे पीछे से सब कुछ बेच बाच के, घर बार बिका हुआ है, बीवी के जेवर बेचे हुए, अब इधर आए आए भी कोई ख़ास वीज़ा नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती। कन्वीनियंस स्टोर्स के जो ओनर्स हैं ना, इनको $4-6 घंटे पर नहीं, बड़ी लीस्ट पे वहाँ रख लेते हैं। उस वक्त फिर लोगों के सवाल क्या होते हैं हम लोगों से, जी नए नए आए हैं पाकिस्तान से, जॉब नहीं, भूखे मर रहे हैं, कर्ज़ा है, वो है, अब ये जॉब तो करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या कि आपको उसमें काम करना है, आपको सारा स्टोर ठीक करना है, आपको शराब लगानी भी है, रखनी भी है, काउंटर पे बेचनी भी है। शुरू में कबाहत बहुत आती है क्योंकि हमारे मुल्क में और चीज़ों की हो ना, शराब और खिंजीर के गोश्त की हुरमत वाकई बहुत है। खैर, शुरू में मजबूरियों का नाम ले लेके वो लोग वहाँ जॉब करनी शुरू होते हैं। नहीं नहीं बड़ा डर लगता है, बस छोड़ देंगे, कोई और जॉब मिल जाए। किस्सा मुख्तसर बात को इन शॉर्ट करते हुए, वो थोड़े दिन उस जॉब की आदत हो जाती है। कुछ अरसा जब वहाँ रहते हैं तो शराब से भूख ख़त्म। आप देखें, वहाँ जहाँ शराब होगी वहाँ लॉटो भी होती है, लॉटरी होती है, वहाँ फिर गंदे मैगजीन्स भी होते हैं और वहाँ सारी चीज़ें कहानियाँ चलती हैं। फिर एक वक्त क्या आता है, जो मैंने खुद कई साथियों को देखा कि ये असल में ऐसी ख़तरनाक जगह है कि आप किसी शराबी को ना चीज़ देना, वो आपको मार। सबसे ज़्यादा मर्डर्स जो मेरे इल्म में आते हैं ना, जो हम सुनते थे बैठे हुए, वो कन्वीनियंस स्टोर्स के होते थे। शराबी आया, पैसे नहीं थे, गोली दिखाई, गोली मार के तो चीज़ लेके भाग दे, इस तरह की कहानियाँ होती थी, बहुत होता है। फिर होता क्या है कि जो ओनर है ना, वो खुद भी इतने लोन ले लेके इंटरेस्ट पे उस स्टोर को बिल्कुल ख़त्म कर चुका होता है अंदर से। अब वो $6 या $5 घंटे के एम्प्लॉई को ऑफ़र देता है, डू यू वॉन्ट टू बाय दिस स्टोर? अब आँखें नहीं खुल जाएंगी एक बंदे की कि महीना पूरा काम करके वो अगर वहाँ से $1,000 भी नहीं कमा रहा और उसको पता चले कि रोज़ मेरे हाथ से यहाँ $3,000-4,000 की सेल होती है, कहते मैं कैसे ले सकता हूँ? वो कहते आओ बस थोड़े बहुत हैं, किसी से कर्जा लेके दे दो, बाकी तुम ले लो। इस तरह से यकीन करें, एक एक एम्प्लॉई 2-3 साल के अंदर उसी स्टोर का ओनर बन जाता है। बाहर तो बड़ी पंप एंड शो है, लेकिन 2-3 साल के बाद पता चलता है कि अंदर कितना गहरा कुआं है, जिसके अंदर हम अपनी मेहनत, अपना वक्त, अपना पैसा लगा रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आता। ये कहानी है आमतौर पर 50-50 मील दूर रोज़ मर जाते हैं शहर से दूर, सिर्फ अपना स्टोर के ऊपर काम करने के लिए और बीवियां घर में, और ये बहुत दुख की कहानी। अब जब ऐसे लोगों से बात करें तो वो ये बात कहते हैं कि देखें, सारे स्टोर में तो चीज़ें ऐसी हैं, वो हैं एक ये थोड़ी सी तो है, कोई अपने दिल की तसल्ली के लिए कहते हैं हम वो पैसा अलग रखते हैं, हम वो पैसा सदका करते हैं, कोई कुछ सो कुछ, तो वही मिसाल याद रखिएगा। कोई अल्लाह का बंदा उनको कहता है कि देखो वो कौन है, अरज़ा, क्या वो अगर इतने आइटम्स में तुम्हें रिस्क दे रहा है तो क्या शराब छोड़ दोगे तो क्या होगा? कहते हैं नहीं, सबसे ज़्यादा कमाई शराब की है, फिर सिगरेट की कमाई, फिर उसमें लॉटो की कमाई, फिर जो कहानी है, रिस्क नहीं ले पाते लोग। कुछ स्टेट्स में तो वैसे ही अलाउ नहीं है, ड्राई स्टोर्स कहते हैं ऐसे स्टोर्स को, कुछ करते हैं, लेकिन यकीन करें पिछले 10-12 साल से बीसियों ऐसे साथियों को हम जानते हैं कि जो इस मुसीबत में फंसे हुए, और इस वक्त भी अल्लाह करे कि इस वक्त तो छोड़ दिया हमारे उन ब्रदर ने, लेकिन एक मुसलमान के शायद 60-70 कन्वीनियंट स्टोर्स हैं, शराब बिकती है, और वो दिल को ये तसल्ली देते हैं हम शराब थोड़ी बेचते हैं। अब मिसाल है कि एक बंदे के कारोबार में ये है, अपनी माँ को कहते हैं अम्मी दुआ करो मेरा कारोबार बढ़े, तो माँ क्या दुआ करेगी, अल्लाह मेरे बच्चे के हाथों से शराब बिके, लोगों की अकल मारी जाए, और शराब शराब पी के करते क्या होंगे? एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं वहाँ हमारे पास, रिजवान सालेह। तो उनका एक दफ़ा मैंने इस पर टॉप लेक्चर सुना था, आंखें खोलने वाला था। कहते कभी किसी ने ये सोचा कि जो मेरे हाथ से शराब की बोतल लेके जा रहा है, कल इसको पी के बाद मैं क्या करने वाला है? कुरान तो नहीं पढ़ेगा ना इसके बाद, नमाज तो नहीं पढ़ेगा ना। तो लिहाजा रब्बना तीना फित दुनिया हसना, वो दे सकता है, वो मालिक है उसके हाथ में। जो परिंदों को रिस्क देता है, जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं, जिनका कोई कारोबार नहीं है, तो क्या इंसानों को नहीं देता? अल्लाह ताला कहते हैं कुतिल अल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शयइन खलक़ा। तू याद कर इंसान, तू था क्या? माँ के पेट में था जब तू या अल्लाह नहीं कह सकता था, या रहमान नहीं कह सकता था, उस वक्त तुझे कौन रिस्क देता था? तू पेट में आया, अल्लाह ने माँ के खून के अंदर से तुझे खुराक दी। तू दुनिया में आया, तेरे पूछे बगैर माँ के सीने से अल्लाह ने तुझे दूध दे दिया, क्या तुझे बड़ा होने पर ना देगा? तो लिहाजा हज के ऊपर कोई जाए तो ये दुआ करे। पहले तो आप देखिए, जब ऐसी कमाई होती है, हज पे जाने की तौफीक ही नहीं होती। डिले 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 डिले, एक जुमला लिख लें, जब हमारे माल में हराम की अमेजिश हो जाती है ना, इसका लामुहाला असर यह है कि नेकियों की तौफीक कम से कम हो जाती है। हम रिस्क लेने से डरते हैं, हमें बहुत खौफ होता है इस बात का कि पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात करके फरमाते हैं, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई के मुताबिक जगह पाएंगे, यानी जो अल्लाह की फरमा बरदारियों के साथ दुनिया में हलाल कमाते हैं, और दुनिया भी अच्छी मिलती है, आखिरत भी अच्छी होगी, अल्लाह ताला इनको ज़रूर इनकी कमाइयों के हिस्से देगा। और अल्लाह ताला बिल्कुल देने वाला है, उसको हिसाब लगाते देर नहीं होती। एक मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट थी हमारी, वहाँ पूरी फैमिली उनकी हमारी क्लास में आती थी, उनका पूरा ग्रोसरी स्टोर था, इंतहाई हार्ड वर्किंग वो फैमिली थी। दिन रात बीवी शौहर बेटे दोनों बेटी वहाँ काम करती थी। क्लासेस में आई, जब पता चला, खैर खुद ही अल्लाह दिल में डालता है, उन्होंने कहा हमने इसको नहीं रखना, बेचते हैं। और एस्टिमेशन उनका क्या था कि ये कितने लाखों का बिकेगा, और इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। किस्सा मुख्सिर जब उन्होंने बेचने पर लगाया, एंड पे फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी पहचान, याद रखिए, जिस कारोबार में अल्लाह की नाफरमानी मिल जाती है ना, एंड ऑफ द डे ज़ीरो। 10,000 की कमाई है ना तो 11,000 का बिल आया पड़ा होता है घर में। 20,000 की आज सेल आई है ना तो जाते जाते गाड़ी ठुकती है तो 21,000 का बिल बन जाता है। इजी कम इजी गो। आप थोड़ा अपना साइकिल रखें हलाल का, अल्लाह आप पे थोड़े खर्चे डालेगा। ये एक इंतकाम है, ये सरीउल हिसाब जो अल्लाह ताला ने कहा ना, ये सच है। बज़ाहर हराम में बहुत मनी आती है, बरकत नहीं, दिल का सुकून नहीं, खुशी नहीं, रिश्तों की तमीज़ नहीं। और जब थोड़ी आती है, अल्लाह ताला उसी में बरकत दे देता है। फिर दोबारा मक्का वालों की उसी आदत की तरफ इशारा है जो पीछे तस्करा हुआ, वस्कुरुल्लाह फी अय्याम मादूदात, और याद करो अल्लाह को गिने हुए दिनों में, गिनती के चंद दिन हैं, ये 3 दिन जो तुम इनाम में रहते हो उसकी तरफ इशारा है। फमन ताज्जल फी यौमैन, जो इन दिनों में जल्दी करे, फला इस्मा अलैहि, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। वमन ताखर फला इस्मा अलैहि, और जो देर करे ताखीर करे उस पर भी कोई गुनाह नहीं। शर्त क्या है? लिमन तका, जो तकवा इख्तियार करे। हज 9 ज़िलहज को होता है, उसके बाद 10, 11 और 12, ये 3 दिन जो रिकमेंडेड है ना, पसंदीदा है, वो क्या है कि मीना में रहें, वही ओपन जगह है और खेमे लगे हुए हैं। लेकिन कोई मजबूरी में इन 3 दिनों में से पहले ही मक्का में वापस चला जाए, फला इस्मा अलैहि, और कोई पूरे 3 दिन करे तो भी कोई बात नहीं। देखिए जहाँ रुख्सत है अल्लाह ताला खुद ही बता देता है, जाना ज़रूरी है, कोई 3 दिन पूरे करके यहाँ रहे तो भी अच्छा है, नहीं रहता तो भी अच्छा है। लेकिन शर्त क्या है? लिमन इत्तका, तकवा साथ लेके जाना। ये नहीं कि मीना के 3 दिनों में फिर तुम फैमिली सारे सब्जेक्ट ही वहाँ डिस्कस करते रहो और तकवा की बजाय गीबतें लेकर आ जाओ। वत्तकुल्लाहा, और डर जो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुमको उसी की तरफ लौटना है। कितनी दफ़ा लफ्ज़ तकवा आया, आप ज़रा इसको नोट करिएगा बाद में। इन 2 लेसन्स में तकवा तकवा तकवा, कोई फिल्म नहीं देख के उठ रहे कि जिसके बाद अल्लाह कह रहा है डरो। हज करके जा रहे हैं, सारा माल इतना लगा, वक्त लगा, जॉब छोड़ी, घर छोड़े, बच्चे छोड़े, और इसके बाद अल्लाह करे अल्लाह से डरो, तो आप ज़रा सोचिए कि फिर हमें आम ज़िंदगी में तकवा की कितनी ज़रूरत होती है। हज का एक ही तोहफा है, तकवा, और अन्नकुम इलैहि तुहशरून, मैदान मख्शर की सख्तियाँ याद हैं, और हकीकत में अरफात के दिन सारी याद आती हैं। उस दिन बंदा कहता है, हाय अल्लाह, एक दिन हमने ऐसे ही खड़े होना है। ला तज़ूल क़दमन इब्ने आदम इंदे रब्बी ही, इंसान वहाँ खड़ा होकर याद करता है अल्लाह ताला को कि हकीकत में अल्लाह ताला हमने तेरे साथ ये मामला करना है। आप यहाँ देखें कि हज की बातें टूटी टूटी हुई हैं, और आप देखें सब के अंदर से जो आखिरी बात समझाई गई, तकवा। हमें फिक्र नहीं पढ़ाई गई, लेकिन ये मुझे पता है कि जब भी आप हज पे जाते हैं उससे पहले ही आपको वो एक रिफ़्रेशिंगली देखना और सुनना पड़ता है, या एक हज आप कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको इन सारी बातों को सुनने में लगा कि अभी तक हज के बारे में बहुत क्वेश्चन है, वो कब मीना में जाना है, कब मुज़दलिफ़ा में जाना है, डोंट वरी, कुरान तफसीर की किताब है, ये फ़िक़ की किताब नहीं है। जितने फ़िक़ी या क्वेश्चन आंसर्स वाली चीज़ें वो आपको इंशाल्लाह तफ़हीम व सुन्ना में पढ़ाएंगे, तो आपके ज़हन में वो क्वेश्चन ना हो। पूरे सबक के अंदर आप दो बातों पे गौर कर लें, आप देखेंगे हज और उम्रे की बिदात जो मक्कों में मक्का वालों में थी, उससे टैली कर लें आज अपनी जो हम कुछ करते हैं, और दूसरी तकवा। बस इतना समझ गए, आपने सबक का लेसन जो है वो पूरा हासिल कर लिया। आप यहाँ से सबक के आखिर तक दो किरदार हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला हमें तवज्जो दिलाते हैं। फरमाया, व मिनन नासि मैं युजिबु का कौलुहु फिल हयाति दुनिया, लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यानी कोई एक करेक्टर, अब यहाँ से आप इमेजिनेट करें, दो करेक्टर्स हैं हमारे पास सबक के एंड तक। पहला क्या है, बड़ी खूबसूरत बातें करता है, बड़े बड़े दावे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अगर इसका बेहतरीन आपने कोई तजुर्बा करना है या सोचना है तो कोई भी इलेक्शन में खड़ा हुआ कैंडिडेट सोच ले। कभी देखा जब कन्विंसिंग हो रही होती, आपकी टूटी हुई सड़कें बना देंगे, आपके गटर ठीक करा देंगे, है कोई ऐसा किरदार जो बड़ी बड़ी बातें करता है। वयुश्किदुल्लाहु अला मा फी क़ल्बी, बात बात पे कस्में खाता है, अपनी नेक नियति पर अल्लाह ताला को गवाह बनाता है, हालांकि हकीकत में वहुवा अलद्दुल खिसाम है, बड़ा झगड़ालू। एक किरदार है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे मौका मिले तो मैं ये कर दूंगा, मुझे मौका मिले तो मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब उसको मौका मिलता है हुकूमत का, वह इज़ा तवल्ला, और जब वो वली बनता है, तवल्ला का मानी यहाँ दो मानों में है जिसमें ज़्यादा दुरुस्त वली बनना, यानी हुकूमत मिल जाती है, सदर बन गया, वज़ीर बन गया, MPA, MNA, कोई भी कैंडिडेट बन गया, अब वो सारे दावे भूल गया, कर क्या रहे, सा फिलर दिलयुफ सीधा फीका, फिलर से मुराद वो मुल्क है जहाँ का वो बड़ा बना, उस मुल्क में फसाद ही कर रहा है, उसकी सारी कोशिशें अपना घर भरने में, सड़कें लोगों की तो नहीं जुड़ती लेकिन उसके घर के रास्ते को जो जाती है वो बन जाती है, या जो सड़क उसके गांव को जाती है वो तो बन जाती है, और चारों तरफ फसाद फसाद है, और उसकी पॉलिसीज़ के वयुहलिकल हरसा, खेतियों को हलाक करता है, यानी बड़ी बड़ी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसी दवाइयाँ मंगवाता है अपने मुल्कों के फसलों पर कि जिससे सारी फसलें पकी हुई ज़ाया हो जाएँ, ताकि उन मुल्कों से ही हम लेते रहें मदद। वन नस्ला, और नस्ल कुशी करता है, फैमिली प्लानिंग के सिस्टम्स वो शुरू मुतारफ़ कराता है। किस्सा मुख्सिर, आप ये कह लें कि ये वो किरदार है जो मुल्क और अवाम के सारे मुफादात को बेच देता है, उसको सिर्फ अवाम लगती है तो अपने घर वाले ही लगते हैं, उसको बस उनकी फ़िक्र है। ऐसा शख्स जो है जब बहुत ही गलत काम कर रहा होता है ना, तो लोग आके उसको डराते हैं, और उसको क्या कहते हैं कि लोग, ए अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर। व इज़ा क़ील लहुत्तकिल्ला, और जब उसको कहा जाता है कि अल्लाह से डरो कि मरना नहीं है, हाँ दूसरों का इंजाम देख के तुम्हें अपना इंजाम नहीं याद आ रहा, तो उसका हाल क्या होता है, ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अख़ज़त हुल इज़्ज़तु बिलइस्मी, गुनाह पे अकड़ने लगता है। आप ये कह लें कि अपने वक़ार का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है, अपने लफ्ज़ों में आप कह लें स्टबन हो जाता है, ढीठ होता है, वो कहता है करूँगा, इसको भी पकड़ लो, इसको मेरे ऊपर तनकीद करने की जुरत हुई, पकड़ के इसके बच्चों को कैद में डाल दो। यानी ये वो शख्स है जो अपनी नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है, अथॉरिटी का, ओहदे का गलत इंतज़ाम करता है, और डंके की चोट पर गलत काम करता है, और ऐसे किरदार आपको बहुत दिखेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं फ़हस्बुहु जहन्नम, बस काफ़ी है उनके लिए जहन्नम। व वलबी सलमिहात, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। 4 दिन की चांदनी है, कर लो। इसको खुद नहीं पता कल मुझे किसने मार देना है, हो सकता है इसका अपना ही कोई इसको मार दे। तो 4 दिन की बातें फ़ायदा नहीं देंगी। यहाँ याद क्यों आ गई भाई? पीछे हज और उमरे की बातें थी, यहाँ एकदम एक इतना बुरा किरदार क्यों सामने आ गया? असल में ये बात उसी तकवा से रिलेटेड है कि कुछ लोग इतनी बातें करके, अल्लाह ताला से इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बावजूद अमली ज़िंदगी में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स एक शख्स, हो सकता है उसको कभी हज का मौका मिला ना हो, उम्रे पे ज्ञान ना हो, लेकिन उसके दिल की कैफियत क्या है कि वो अपना नहीं रहा, वो अपने रब का बन गया। आखिरी आयत लहसन की, वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, लोगों में कोई ऐसा भी है जो अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए बेच देता है। वो अपना नहीं है, वो तो अवाम के मुफादात को दाव पे लगाता है ना। ये वो शख्स है जो दुनिया में रहते हुए अपना नहीं रहता, अल्लाह ताला का बन जाता है। ये कैसे अपना आप अल्लाह की मर्ज़ी के लिए बेचता है? इसके बारे में आता है कि यह आयत एक सहाबी हज़रत सुहैब रूमी के बारे में नासिल हुई। हिजरत करके जाने लगे तो काफिरों ने कहा कि ये माल तो तुमने मेरे हम यहाँ से कमाया है, हम नहीं देंगे। कहा अच्छा ले लो। चलने लगे, सारा माल उनको दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लम के पास पहुँचे, सिर्फ जिस्म पे कपड़े थे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि सुहैब तुम क्या लेकर आए? कहा अल्लाह के नबी अपना ईमान बचा के आ गया। आपने फरमाया सुहैब ने नफ़े बख्श तिजारत की। कहते हैं कि उनके बारे में आयत उतरी कि कुछ तो अल्लाह के रास्ते में इतनी कुर्बानियां देने वाले होते हैं कि वो अपना आप भी बेच देते हैं। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि जब उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत करने की कोशिश की तो उनके भाइयों ने सारा माल ले लिया कि भाई ये तुम्हारा साझा खाता था, का ले लो। थोड़ा आगे गए तो अपने माँ बाप सामने आए, कहने लगे ये पोता हमें दे के जाओ, ये हमारी नस्ल से है, इनका बेटा था, का ले लो, वो दे दिया। थोड़ा और आगे चले तो बीवी को लेने उसके मैके वाले आ गए कि भाई हमारी बेटी, हमने इसलिए नहीं दी थी कि इधर उधर छोड़ ले जाओ, वापस करो। बीवी दी, अकेले अल्लाह के नबी के पास पहुँचे। हम सब भी पूछें, और ये है असल में पूरे सबक का थीम कि बताओ तुम अल्लाह के कितने बने हो। हम में से किसने अपना आप अल्लाह के लिए बेचा कि अल्लाह राज़ी हो जाए? और अगर एक दफ़ा बेच के देख लें अपने आप को, वल्लाहु रऊफुम बिलिबाद, इतनी बड़ी आपकी कीमत लगाएगा ना कोई नहीं लगा सकता। दुनिया वाले अमूमन हमारी क्या कीमत लगाते हैं? मसलन हम 1 घंटा कहीं काम करें, शायद 100 क्रोन घंटे के मिल जाएंगे या इससे ज़्यादा, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है ना। आप अगर इस 1 घंटे में, जिसमें आप पिछले कई घंटे से सबक सुनते रहते हैं, पढ़ते हैं, कभी तजवीद करते हैं, आपको पता है अल्लाह ने आपकी क्या कीमत लगाई है? मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह ने आपको इतना सब्र कैसे दिया हुआ है। मैं आप लोगों के हाल पे हैरान होती हूँ कि शुरू के पारों में कभी कोई इतना कूल एंड काम नहीं होता। माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़रे बद से बचाए, बस ये आपकी कीमत लग रही है। जिस तरह लोग 3 घंटे की फिल्म में पलक नहीं झपकते ना, मैं वाकई आप लोगों को देखती हूँ कि आप बहुत स्टिल कूल एंड काम है। समझ लें कि अल्लाह ने आपको कबूल किया, अल्लाह ने आपका ये सौदा कबूल कर लिया। यकीन करें आपकी अल्लाह से ज़्यादा कीमत कोई नहीं लगा सकता। आपके इस वक्त की, आपकी एफर्ट की, तकलीफ़ की, भूख की, प्यास की, इतनी बड़ी कीमत अल्लाह ने कल आपको देनी है कि आपने कल कहना है अल्लाह ताला हमने इतनी तो कुर्बानी नहीं की थी, हम तो बस ऐसे ही चले जाते थे। अभी आपको खुद भी नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कुछ देना है। तो यहाँ पे इस खूबसूरत पैगाम पे ये सबक पूरा होता है कि अगर तकवा ज़िंदगी में आ जाए, ज़िंदगी का मकसद समझ जाए इंसान, अल्लाह ताला क्या चाहता है मैं वो करूँगी, शुरू में कोई चीज़ मुश्किल लग भी जाए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उसको आसान कर देगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आखिरी फतह जो है वो तकवा वालों की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।